एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब की गहराई में उतर रहे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर करती है, मैथ्यू डेसमंड की पॉवर्टी बाय अमेरिका।
हाँ, और ये किताब में खास इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, सीधा सवाल पूछती है कि भाई दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक अमेरिका, वहां इतनी गरीबी क्यों है।
बिल्कुल, और डेसमंड का जवाब थोड़ा सा कह सकते हैं कि असहज करने वाला है।
हाँ,
वो कहते हैं कि ये गरीबी कोई हादसा नहीं बल्कि एक व्यवस्था का नतीजा है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं जाने अनजाने शामिल हैं।
ये आज इसलिए भी जरूरी है ना क्योंकि असमानता, मतलब इनइक्वालिटी, ये तो दुनिया भर में एक बड़ा मुद्दा है।
सही बात है, और डेसमंड का जो विश्लेषण है वो अमेरिका के बहाने हमें ये समझने में मदद करता है कि कैसे अमीरी और गरीबी ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं।
तो आज हम इसी किताब के जो मुख्य विचार हैं, इसके तर्क और जो रास्ते सुझाए गए हैं, उन पर बात करेंगे।
हाँ, कोशिश करेंगे समझने की कि डेसमंड आखिर कह क्या रहे हैं और क्यों ये जानना हम सबके लिए जरूरी हो सकता है।
तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक से ही। ये मैथ्यू डेसमंड हैं कौन और इनका नजरिया इतना अलग क्यों माना जाता है?
मैथ्यू डेसमंड वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के प्रोफेसर हैं, लेकिन जैसा आपने कहा वो सिर्फ किताबी प्रोफेसर नहीं है।
अच्छा,
उनकी असली पहचान उनके जमीनी काम से है। वो द इविक्शन लैब के संस्थापक हैं। ये लैब घरों से बेदखली यानी इविक्शन पर डेटा इकट्ठा करती है पूरे अमेरिका का।
हाँ, और उनकी जो पिछली किताब थी इविक्टेड, उसे तो पुलित्जर पुरस्कार भी मिला था। वो किताब इसी जमीनी हकीकत पर थी, है ना?
बिल्कुल, इविक्टेड ने बहुत ही मार्मिक ढंग से दिखाया था कि कैसे घर से निकाल दिया जाना लोगों की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर देता है।
डेसमंड की खासियत शायद यही है कि वो सिर्फ आंकड़ों में नहीं उलझते, उन्होंने खुद उन समुदायों में वक्त बिताया है, लोगों के साथ रहे हैं, उनकी कहानियां सुनी हैं।
हाँ, इसे एथनोग्राफी कहते हैं। ये सिर्फ सर्वे करना या आंकड़े देखना नहीं है बल्कि महीनों, कभी कभी सालों तक लोगों के बीच रहकर उनकी जिंदगी को अंदर से समझना।
तो इविक्टेड में उन्होंने गरीबी की जो मानवीय पीड़ा है उसको दिखाया, और अब पॉवर्टी बाय अमेरिका में वो एक कदम पीछे हटकर सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये पीड़ा आखिर पैदा कहाँ से हो रही है।
अच्छा,
वो उन बड़ी व्यवस्थाओं, उन नीतियों का विश्लेषण करते हैं जो इस गरीबी को न सिर्फ जन्म देती हैं बल्कि उसे बनाए भी रखती हैं, और उनका जो अनुभव है वो उन्हें ये सवाल उठाने का एक तरह का नैतिक बल देता है कि क्या अमीर देशों की जो समृद्धि है वो कहीं गरीबों के शोषण पर तो नहीं टिकी।
चलिए अब किताब के मूल विचार पर आते हैं। पॉवर्टी बाय अमेरिका, ये किस बड़ी आम सोच को चुनौती दे रही है? यह है कि अमेरिका में गरीबी जानबूझकर बनाई गई नीतियों और आर्थिक संरचनाओं का परिणाम है, और सबसे अहम बात, इन संरचनाओं से संपन्न वर्ग यानी मिडिल और अपर क्लास को फायदा होता है।
मतलब आप कह रहे हैं कि गरीबी सिर्फ चीजों की कमी नहीं बल्कि एक तरह का शोषण है, ये कहना तो काफी बड़ी बात है।
हाँ, और यही डेसमंड का मुख्य बिंदु है। वो कहते हैं गरीबी कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक डिजाइन है, एक तरह की व्यवस्था है।
अच्छा,
ये शोषण आपको श्रम बाजार में कम मजदूरी के रूप में दिखता है, हाउसिंग मार्केट में महंगे किराए और बेदखली के डर के रूप में, और फाइनेंशियल सिस्टम में गरीबों से जो ज्यादा फीस वसूली जाती है उसके रूप में। किताब का मकसद ही यही है कि गरीबी पर जो बहस है उसे गरीबों की आदतों या व्यवहार से हटाकर उन व्यवस्थाओं पर लाया जाए जो इसे कायम रखती हैं। और डेसमंड खास तौर पर उन पढ़े लिखे संपन्न लोगों से बात कर रहे हैं जो शायद अनजाने में ही इस व्यवस्था के हिस्सेदार बने हुए हैं।
तो किताब हमें एक तरह से दिखाती है कि शोषण का सिस्टम काम कैसे करता है, फिर सरकार की क्या भूमिका है सब में, उस पर सवाल उठाती है और फिर अंत में कुछ समाधान भी सुझाती है।
बिल्कुल, डेसमंड पहले समस्या की जड़ें खोदते हैं, फिर दिखाते हैं कि कैसे सरकार की नीतियां, जिसे वो उल्टा वेलफेयर स्टेट कहते हैं, वो असल में अमीरों की ज्यादा मदद करती हैं, और आखिर में वो पाठकों से गरीबी उन्मूलनवादी यानी पॉवर्टी एबोलिशनिस्ट बनने का आह्वान करते हैं।
पॉवर्टी एबोलिशनिस्ट
मतलब सिर्फ दान करना काफी नहीं है बल्कि व्यवस्था को बदलने की लड़ाई लड़नी होगी।
ठीक है, तो थोड़ा और गहराई में चलते हैं। किताब का जो विश्लेषण वाला हिस्सा है उसमें डेसमंड गरीबी के कारणों को कैसे परत दर परत खोलते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है?
शुरुआत होती है उसी बुनियादी सवाल से कि अमेरिका इतना अमीर होकर भी इतना गरीब क्यों है। डेसमंड आंकड़ों से दिखाते हैं कि देखो, गरीब लोग असल में कड़ी मेहनत करते हैं, अक्सर एक से ज्यादा नौकरियां करते हैं, फिर भी गुजारा मुश्किल होता है।
हाँ, ये बात तो है।
तो वो तर्क देते हैं कि समस्या लोगों में नहीं बल्कि काम के अवमूल्यन में है, मतलब काम की कदर नहीं है। पिछले कई दशकों में आप देखें तो मजदूरों की मोलभाव करने की ताकत कम हुई है, यूनियनें कमजोर हुई हैं, न्यूनतम मजदूरी महंगाई के हिसाब से बढ़ी नहीं है, और जो कॉरपोरेट नीतियां हैं वो भी मुनाफे को मजदूरी से ज्यादा तरजीह देती हैं। डेसमंड कहते हैं ये सिर्फ बाजार का नतीजा नहीं है, ये शक्ति का असंतुलन है, पावर इम्बैलेंस है।
यानी काम भी है, मेहनत भी है, पर पैसा नहीं है। और ये शोषण सिर्फ काम तक ही नहीं है, जैसा आपने पहले कहा, घर और पैसे, मतलब आवास और फाइनेंस का क्या रोल है उसमें?
हाँ, ये शोषण कई लेयर्स में है, कई परतों में है। डेसमंड दिखाते हैं कि कैसे आवास बाजार, मतलब हाउसिंग मार्केट, गरीबों के लिए एक जाल बन गया है। कम आय वाले लोग अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, कभी कभी तो आधा या उससे भी ज्यादा, सिर्फ किराए पर खर्च कर देते हैं।
बाप रे, आधा?
हाँ, और बेदखली का डर, घर से निकाल दिए जाने का डर, वो हमेशा बना रहता है, जो उन्हें और ज्यादा अस्थिर और वल्नरेबल बना देता है।
इसमें वो एक टर्म यूज करते हैं, एक्सक्लूजनरी जोनिंग, है ना? ये क्या चीज है और ये कैसे काम करती है?
एक्सक्लूजनरी जोनिंग सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर असल में ये कुछ नियम कायदे हैं जो अमीर इलाके इस्तेमाल करते हैं ताकि वहां सस्ते घर ना बन सकें।
अच्छा, कैसे?
जैसे नियम बना देना कि यहां सिर्फ बड़े प्लॉट पर बंगले ही बन सकते हैं, या फिर मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट बनाने पर रोक लगा देना। इससे होता क्या है कि उन इलाकों में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, जिसका सीधा फायदा वहां के घर मालिकों को होता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि गरीबों के लिए रहने की जगह कम हो जाती है, महंगी हो जाती है, और अक्सर घटिया क्वालिटी की होती है। अब सोचिए, हम अक्सर कहते हैं ना, अच्छे स्कूल वाला मोहल्ला। डेसमंड कहते हैं ये अच्छे स्कूल वाले मोहल्ले असल में अवसर छिपा कर रख रहे हैं, सबके लिए नहीं खोल रहे।
इसे वो अवसरों की जमाखोरी, अपॉर्चुनिटी होर्डिंग कहते हैं।
बिल्कुल, यानी मौके सबके लिए नहीं है, बस कुछ खास लोगों के लिए बचा कर रखे जा रहे हैं।
और फिर आता है वित्तीय शोषण। ये कैसे, मतलब गरीब होना महंगा कैसे पड़ सकता है?
ये एक और चौंकाने वाली बात है जो डेसमंड सामने लाते हैं, कि जिनके पास सबसे कम पैसा है उन्हें ही बैंकिंग जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए सबसे ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है।
लेकिन कैसे?
देखिए, अगर आपकी पहुंच पारंपरिक बैंकों तक नहीं है तो आप चेक कैशिंग सर्विसेज या पे डे लोन जैसी महंगी सेवाओं पर निर्भर हो जाते हैं, जहां ब्याज दरें बेतहाशा ज्यादा होती हैं।
हाँ, ये तो सुना है।
और अगर बैंक खाता है भी तो जरा सा बैलेंस कम होने पर भारी भरकम ओवरड्राफ्ट फीस लग जाती है। डेसमंड इसे एक तरह का गरीबी टैक्स कहते हैं। ये पैसा गरीबों की जेब से निकालकर सीधे फाइनेंस इंडस्ट्री को और अमीर बनाता है।
डेसमंड का एक तर्क ये भी है जो थोड़ा सुनने में अजीब लगता है, कि संपन्न समाज जो है वो गरीबों पर निर्भर है, ये कैसे?
हाँ, ये विरोधाभासी लगता है, पर डेसमंड इसे व्यवस्था की एक कड़वी सच्चाई की तरह पेश करते हैं। वो कहते हैं कि अमीर और मध्यम वर्ग को सस्ता श्रम चाहिए, बच्चों की देखभाल के लिए, घर के काम के लिए, रेस्टोरेंट चलाने के लिए, सामान की डिलीवरी के लिए। ये काम अक्सर कम वेतन पर, बिना किसी खास सुविधा या सुरक्षा के होते हैं। और सिर्फ श्रम ही नहीं, गरीब लोग किराएदार बनकर और महंगी वित्तीय सेवाओं के ग्राहक बनकर भी अमीरों के लिए मुनाफे का स्रोत बनते हैं।
तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि
हाँ, डेसमंड हमें यही सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी जो सुविधा है, हमारी जो समृद्धि है, वो कहीं ना कहीं दूसरों के शोषण पर तो नहीं टिकी हुई है।
तो ये तो हुई शोषण की पूरी व्यवस्था। अब आते हैं सरकार की भूमिका पर। डेसमंड अमेरिकी सरकार की जो कल्याणकारी नीतियां हैं, वेलफेयर पॉलिसीज, उनकी आलोचना क्यों करते हैं?
वो कहते हैं कि अमेरिका में गरीबों की मदद करने वाली जो व्यवस्था है, उसे जानबूझकर इतना मुश्किल, इतना अपमानजनक और अपर्याप्त बनाया गया है कि उसका फायदा उठाना ही बहुत कठिन है।
मतलब
मदद पाने के लिए इतने फॉर्म भरने पड़ते हैं, इतने चक्कर काटने पड़ते हैं, इतने सवाल पूछे जाते हैं कि कई जरूरतमंद लोग तो हिम्मत ही हार जाते हैं। और अगर मदद मिलती भी है तो अक्सर वो इतनी कम होती है कि उससे गरीबी से बाहर निकलना नामुमकिन सा होता है। और इसकी तुलना वो उस आसानी से करते हैं जिससे अमीर लोग टैक्स छूट या दूसरी सरकारी सब्सिडियों का फायदा उठा लेते हैं।
यहीं पर वो उल्टा वेलफेयर स्टेट, यानी अपसाइड डाउन वेलफेयर स्टेट का विचार लाते हैं ना, ये क्या है?
हाँ, और ये शायद किताब का सबसे, आप कह सकते हैं, विस्फोटक आइडिया है।
अच्छा,
डेसमंड आंकड़ों से दिखाते हैं कि अमेरिका में सरकारी मदद का जो सबसे बड़ा हिस्सा है
वो गरीबों को नहीं बल्कि अमीरों और मध्यम वर्ग को जाता है।
क्या, ये कैसे?
ये मदद सीधी कैश में नहीं मिलती बल्कि टैक्स कानूनों के जरिए मिलती है।
जैसे अगर आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो उसके ब्याज पर आपको टैक्स में भारी छूट मिलती है। रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहे हैं तो उस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है। बच्चों की कॉलेज की पढ़ाई के लिए बचत योजनाओं पर छूट मिलती है।
हाँ, ये सब तो होता है।
डेसमंड हिसाब लगाकर बताते हैं कि इन सारी सब्सिडियों की जो कुल रकम है वो गरीबों को मिलने वाली सीधी मदद जैसे फूड स्टैम्प्स या हाउसिंग वाउचर उससे कहीं ज्यादा है। तो असल में सरकार सबसे ज्यादा मदद उन्हें दे रही है जिन्हें इसकी सबसे कम जरूरत है। यही है उल्टा वेलफेयर स्टेट।
वाह, ये तो वाकई मतलब पूरी तरह से सोच बदलने वाली बात है। और ये नीतियां और वो हाउसिंग वाली पॉलिसी, ये मिलकर अमीरों और गरीबों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया।
बिल्कुल। एक और उदाहरण लीजिए स्कूलों की फंडिंग का। अमेरिका में पब्लिक स्कूलों को पैसा अक्सर लोकल प्रॉपर्टी टैक्स से मिलता है।
हाँ।
तो जाहिर है अमीर इलाकों के स्कूलों के पास ज्यादा पैसा होता है, बेहतर सुविधाएं होती हैं, अच्छे टीचर होते हैं, वहां के बच्चों को बेहतर मौके मिलते हैं। और गरीब इलाकों के स्कूल वो संसाधनों की कमी से जूझते रहते हैं। ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली असमानता को और पक्का करता है। ये वही अफसरों की जमाखोरी है जिसकी बात हम कर रहे थे।
तो इतना सब विश्लेषण करने के बाद डेसमंड समाधान क्या सुझाते हैं? क्या कोई रास्ता है इस सबसे बाहर निकलने का?
हाँ, अच्छी बात यह है कि किताब सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ती, डेसमंड समाधान की बात करते हैं। और वो काफी, आप कह सकते हैं, रेडिकल है, क्रांतिकारी है।
जैसे?
वो कहते हैं कि हमें उन दीवारों को गिराना होगा जो गरीबी पैदा करती हैं और उसे बनाए रखती हैं। इसके लिए ठोस नीतिगत बदलाव जरूरी हैं, जैसे मजदूरों को ज्यादा ताकत देना, यूनियनों को मजबूत करना, न्यूनतम मजदूरी को वाकई जीने लायक बनाना। वो जो एक्सक्लूजनरी जोनिंग थी उसे खत्म करना ताकि हर आय वर्ग के लोग एक ही इलाके में रह सकें, जिससे मौके बटे। गरीबों के लिए सस्ती और सुलभ बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराना, जैसे पोस्ट ऑफिस के जरिए बैंकिंग।
और वो वेलफेयर सिस्टम?
हाँ, सबसे अहम, वेलफेयर सिस्टम को सीधा करना, मतलब सरकारी मदद का फोकस अमीरों से हटाकर उन पर लाना जिन्हें वाकई इसकी जरूरत है। टैक्स सिस्टम को ज्यादा प्रोग्रेसिव बनाना।
और व्यक्तिगत स्तर पर हम और आप क्या कर सकते हैं? वो गरीबी उन्मूलनवादी बनने का आह्वान करते हैं, इसका क्या मतलब है प्रैक्टिकली?
ये किताब का अंतिम और शायद सबसे शक्तिशाली संदेश है। डेसमंड कहते हैं कि सिर्फ चैरिटी करना, दान देना काफी नहीं है। वो जरूरी है पर वो समस्या की जड़ पर चोट नहीं करता। हमें न्याय की मांग करनी होगी।
न्याय की मांग?
हाँ, उन्मूलनवादी या एबॉलिशनिस्ट शब्द का इस्तेमाल वो जानबूझकर करते हैं, जैसे गुलामी को खत्म करने के लिए आंदोलन चला था। वो कहना चाहते हैं कि गरीबी एक नैतिक अन्याय है जिसे खत्म करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
तो एक्शन कैसे लें?
वो तीन स्तरों पर एक्शन लेने को कहते हैं।
हाँ।
पहला, व्यक्तिगत स्तर पर। सोचें कि हम क्या खरीदते हैं, कहाँ पैसा लगाते हैं, क्या हम ऐसी कंपनियों का समर्थन करते हैं जो अपने कर्मचारियों का शोषण करती हैं। दूसरा, नागरिक स्तर पर। अपने समुदाय में सक्रिय हों, सबके लिए घर बनाने की नीतियों का समर्थन करें, जोनिंग कानूनों का विरोध करें जो अलगाव बढ़ाते हैं। और तीसरा, राष्ट्रीय स्तर पर। ऐसी नीतियों नेताओं का समर्थन करें जो गरीबी कम करने के लिए गंभीर हों, मतलब सिर्फ दया नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव की मांग करना।
अगर हम इस किताब के जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समेटने की कोशिश करें तो सबसे अहम बातें क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहला और सबसे बुनियादी संदेश तो यही है, गरीबी व्यक्तिगत नाकामी नहीं बल्कि शोषण का नतीजा है। काम का शोषण, घर का शोषण, पैसे का शोषण।
हाँ, और ये बात सोचते हुए अगर हम भारत के बारे में सोचें तो यहाँ भी अक्सर गरीबी को भाग्य या आलस्य से जोड़ दिया जाता है, जबकि कम मजदूरी, कर्ज का बोझ, ये सब व्यवस्थागत मुद्दे हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता।
बिल्कुल। दूसरा बड़ा संदेश है संपन्न वर्ग की मिलीभगत। ये सुनना थोड़ा असहज लगता है पर डेसमंड कहते हैं कि हम सब जो गरीब नहीं हैं, अनजाने में ही उन व्यवस्थाओं से फायदा उठाते हैं जो गरीबी बनाए रखती हैं, जैसे सस्ता श्रम या बढ़ती प्रॉपर्टी की कीमतें या टैक्स में मिलने वाले लाभ।
हाँ, ये सोचना थोड़ा मुश्किल है, भारत में भी हम सस्ते घरेलू श्रम पर अपनी निर्भरता के बारे में सोच सकते हैं ना?
सही बात। तीसरा, वो उल्टे वेलफेयर स्टेट वाली बात कि सरकारी मदद का बड़ा हिस्सा असल में अमीरों को जाता है। भारत के संदर्भ में भी यह सवाल उठता है कि क्या हमारी टैक्स छूट और सब्सिडी का फायदा सही मायने में जरूरतमंदों तक पहुँच रहा है या यहाँ भी व्यवस्था कहीं उल्टी तो नहीं चल रही।
चौथा संदेश मुझे लगता है उम्मीद देता है कि गरीबी एक नीतिगत चुनाव है, ये कोई प्राकृतिक आपदा या अटल सच्चाई नहीं है। अगर नीतियां बदली जाएं तो गरीबी खत्म की जा सकती है।
हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। ये भारत जैसे देश के लिए भी एक अहम सबक है कि सही नीतियों और राजनीतिक इच्छा शक्ति से बदलाव संभव है।
और पांचवा
वो गरीबी उन्मूलनवाद का आह्वान कि सिर्फ दान पुण्य से आगे बढ़कर न्याय के लिए, व्यवस्था बदलने के लिए आवाज उठाना। भारत में दान की परंपरा बहुत गहरी है, पर यह विचार हमें उन संरचनात्मक सुधारों पर फोकस करने को कहता है जो असल में गरीबी की जड़ पर चोट करें।
किताब में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, है ना? बहुत पावरफुल कोट्स हैं।
हाँ बिल्कुल, जैसे एक जो मुझे बहुत पसंद आई, गरीबी का विपरीत धन नहीं है, गरीबी का विपरीत न्याय है।
वाह, मतलब असली सवाल सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि निष्पक्षता का है, क्या सिस्टम सबके लिए बराबर मौके दे रहा है। ये बहुत गहरा है।
और ये वाली लाइन देखिए, अधिकांश सरकारी सहायता विशेषाधिकार प्राप्त लोगों को जाती है, अमेरिकी सरकार सबसे ज्यादा उन्हें देती है जिन्हें इसकी सबसे कम जरूरत होती है।
ये तो वेलफेयर की हमारी पूरी समझ पर ही सवाल खड़ा कर देती है। वो जो अमीरों को मिलने वाली छिपी हुई सब्सिडी है उसको एकदम सामने ले आती है।
और व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर ये वाली, जब हम अपने समुदायों को बंद कर देते हैं, जब हम अच्छे स्कूलों वाले पड़ोस में घर ढूंढते हैं, तो हम अवसर की जमाखोरी में भाग ले रहे होते हैं।
बाप रे, ये दिखाता है कि हमारे जो रोजमर्रा के लगने वाले चुनाव हैं वो भी कैसे इस बढ़िया समानता का हिस्सा बन सकते हैं। हम सोचते हैं हम अपने परिवार के लिए अच्छा कर रहे हैं, पर शायद अनजाने में दूसरों के लिए दरवाजे बंद कर रहे होते हैं।
और आखिर में ये उम्मीद जगाने वाली लाइन, हम वो पीढ़ी हो सकते हैं जो गरीबी खत्म करे, हमें केवल इसके लिए भुगतान करने से इनकार और ये झूठ रोकना है कि ये हमारी समस्या नहीं है।
ये एक सीधी चुनौती है कि क्या हम कीमत चुकाने और जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। डेसमंड कह रहे हैं कि गरीबी खत्म करना नामुमकिन नहीं है, बस इच्छा शक्ति चाहिए और ये मानना छोड़ना होगा कि ये हमारी समस्या नहीं है।
तो अब सवाल उठता है कि इन सब बातों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है, पर प्रैक्टिकली करें क्या?
हाँ, डेसमंड कुछ व्यवहारिक रास्ते सुझाते हैं। जैसे व्यक्तिगत स्तर पर हम ये सोच सकते हैं कि हम अपना पैसा कहाँ खर्च कर रहे हैं, क्या हम उन कंपनियों का सामान खरीद रहे हैं जो अपने कर्मचारियों को ठीक वेतन देती हैं या उनका शोषण करती हैं। अपनी बैंकिंग को देखें, क्या हम ऐसे बैंकों या वित्तीय संस्थानों का समर्थन कर रहे हैं जो गरीबों से ज्यादा फीस ना वसूलते हों।
और सामुदायिक स्तर पर हम ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। अपने मोहल्ले में या शहर में जब सबके लिए किफायती घर बनाने की बात हो तो उसका समर्थन करें। वो जो निम्बी वाली सोच होती है ना, मेरे आंगन में नहीं वाली सोच होती है,
हाँ,
उसको चुनौती दें।
हाँ, ये जरूरी है।
स्थानीय स्तर पर जो मजदूरों या किराएदारों के अधिकारों के लिए काम करने वाले समूह हैं, उनका साथ दें, उनकी मदद करें।
और बड़े स्तर पर यानी राजनीतिक स्तर पर हम उन नीतियों और उन नेताओं का समर्थन कर सकते हैं जो गरीबी कम करने के लिए वाकई गंभीर कदम उठाने को तैयार हों, चाहे वो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना हो या सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाना हो या फिर टैक्स सिस्टम को ज्यादा न्यायपूर्ण बनाना हो।
पर शायद सबसे जरूरी बदलाव मानसिकता का है, वो दान देने की भावना से आगे बढ़कर न्याय की मांग करने वाली सोच। जब गरीबी पर बात हो तो सिर्फ अफसोस जताने या व्यक्तिगत कमियां गिनाने के बजाय व्यवस्था पर सवाल उठाना।
हाँ, जैसे अगर कोई दोस्त कहे कि अरे यार गरीब लोग तो आलसी होते हैं, तो डेस्पेंड के तर्कों से जवाब देना कि भाई असली मुद्दा काम की कमी नहीं बल्कि काम की सही कीमत ना मिलना है या अवसरों की कमी है।
बिल्कुल।
मेरे लिए ना इस पूरी चर्चा से जो सबसे चौंकाने वाली बात निकल कर आई वो शायद वही उल्टा वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। ये सोचना ही अजीब है कि सरकारी मदद का सिस्टम इस तरह से अमीरों के पक्ष में झुका हो सकता है और हमें पता भी नहीं चलता।
और मेरे लिए गरीबी को सिर्फ अभाव या कमी की तरह नहीं बल्कि शोषण के रूप में देखना, ये बहुत प्रभावशाली था। ये पूरी समस्या को एक बिल्कुल नए फ्रेम में डाल देता है।
और वो गरीबी उन्मूलनवादी बनने का आह्वान, ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं लगती बल्कि ऐसा लगता है कि हाँ, ये एक जरूरी नैतिक स्टैंड है जो हमें लेना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं के लिए ये सवाल छोड़ जाते हैं, क्या हम अपने समाज में अमीरी और गरीबी के बीच के इस गहरे और अक्सर अनदेखे रिश्ते को देखने के लिए तैयार हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम उन व्यवस्थाओं को बदलने के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कुछ करने को तैयार हैं जो इस खाई को लगातार बनाए रखती हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।